एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथसार में आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकाव्य की बात कर रहे हैं जो भारतीय किसान के जीवन का आईना है।
हाँ, उसकी आशाओं का, उसकी त्रासदियों का एक पूरा दस्तावेज।
बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद का अमर उपन्यास गोदान। और सवाल ये उठता है कि मतलब लगभग 90 साल पहले लिखा गया ये उपन्यास आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है?
सही बात है, होरी महतो का दर्द आज भी कहीं ना कहीं छू जाता है।
तो आज की चर्चा में हम इसी उपन्यास की गहराइयों में उतरेंगे।
और इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद, हम सब उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं।
हाँ, धनपत राय श्रीवास्तव उनका असली नाम, लेकिन प्रेमचंद के नाम से उन्होंने साहित्य को एक नई दिशा दी।
बिल्कुल, उन्होंने कहानियों और उपन्यासों को वो महज मनोरंजन या तिलिस्मी की दुनिया से बाहर निकाला
और सीधे भारत के गांवों शहरों की मतलब उस धूल भरी जमीन पर ला खड़ा किया।
वो आम आदमी की आवाज बने, खासकर किसान, मजदूर, शोषित वर्ग, उनकी आवाज।
हाँ, कह सकते हैं कि प्रेमचंद का लेखन एक तरह से प्रगतिशील मानवतावाद का घोषणा पत्र है।
वो मानते थे कि साहित्य का काम सिर्फ मन बहलाना नहीं है, समाज की आलोचना करना, उसे बेहतर बनाने का रास्ता दिखाना भी है।
और गोदान जो 1936 में प्रकाशित हुआ वो उनका आखिरी पूरा उपन्यास है और शायद सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है।
हाँ, व्यापक रूप से। इसकी पृष्ठभूमि है 1930 के दशक का ब्रिटिश भारत,
वो दौर जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था, लेकिन गांव का किसान वो तो तिहरे शोषण की चक्की में पिस रहा था।
जमींदारी, महाजनी, जाति व्यवस्था, सब तरफ से मार।
कहानी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के एक काल्पनिक गांव बेलारी और पास के शहर लखनऊ में घटती है।
और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक बहुत ही साधारण किसान होरी महतो,
जिसका जीवन मतलब संघर्ष ही संघर्ष है, अंतहीन संघर्ष।
लेकिन उसके मन में एक छोटा सा सपना पलता है, बहुत मामूली सा सपना,
पर उसके लिए वो जिंदगी से भी बड़ा है,
एक गाय पालने का सपना।
हाँ, और ये सिर्फ एक जानवर पालने की इच्छा नहीं थी, उस समाज में उस समय में गाय रखना एक इज्जत की बात थी,
प्रतिष्ठा, थोड़ी खुशहाली का संकेत,
और उससे भी गहरा मतलब जुड़ा था धर्म से।
हाँ, वो मान्यता कि मृत्यु के समय गाय का दान यानी गोदान, उससे मोक्ष मिलता है।
तो होरी की ये इच्छा सिर्फ आर्थिक नहीं थी बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक भी थी।
और यहीं से उपन्यास का जो मुख्य संघर्ष है वो उभरता है, एक तरफ होरी की ये छोटी सी मानवीय इच्छा
और दूसरी तरफ वो पूरी दमनकारी व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक, जो उसे कुचलने पर तुली हुई है।
ये व्यवस्था दिखती है जमींदार के लगान में, महाजन के सूद में,
पंडित के दान दक्षिणा के लोभ में,
और हाँ, सरकारी अमले के भ्रष्टाचार में भी।
चलिए जरा किरदारों से मिलते हैं। मुख्य पात्र होरी महतो।
होरी, वो आदर्श भारतीय किसान का प्रतीक है, सीधा साधा, बहुत मेहनती।
हाँ, भगवान से डरने वाला, थोड़ा भाग्यवादी भी कह सकते हैं,
और अपनी नैतिकता, अपनी ईमानदारी पर टिके रहने की कोशिश करने वाला।
लेकिन उसकी यही शराफत, यही ईमानदारी कई बार उसकी मुसीबत का कारण बन जाती है।
बिल्कुल, वो परिस्थितियों का शिकार है, व्यवस्था के आगे एकदम बेबस।
और फिर है उसकी पत्नी धनिया।
धनिया, अरे वो तो होरी से एकदम अलग है।
हाँ बिल्कुल, मुंहफट है, यथार्थवादी है,
अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस है उसमें। जहाँ होरी दब जाता है, धनिया तनकर खड़ी हो जाती है।
वो परिवार की ढाल है और कई बार लगता है जैसे वो होरी की अंतरात्मा को जगाती है।
उनके संवादों में अक्सर जीवन का कड़वा सच और विद्रोह की एक चिंगारी दिखती है।
उनका बेटा है गोबर।
गोबर, हाँ, वो नई पीढ़ी का प्रतीक है, उसमें इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं।
वो गांव की घुटन भरी जिंदगी से निकलना चाहता है, शहर जाना चाहता है।
वो अपने पिता की तरह चुपचाप सब सहने को तैयार नहीं है।
लेकिन
हाँ, उसमें थोड़ा अलहड़पन भी है, थोड़ा स्वार्थ भी। परंपरा और आधुनिकता के बीच का जो द्वंद्व है वो उसके चरित्र में साफ दिखता है।
इनके अलावा भी कई पात्र हैं, जैसे जमींदार राय साहब, अमरपाल सिंह।
हाँ, जो शहर में तो बड़े देशभक्त बनते हैं लेकिन गांव में शोषक हैं, ये दोहरापन उस समय के समाज का आईना है।
भोला है, जिसे होरी गाय उधार लाता है।
होरी का अपना भाई हीरा, जिसकी ईर्ष्या कहानी में एक दुखद मोड़ लाती है।
और फिर गांव के वो शोषक स्तंभ,
महाजन झिंगुरी सिंह और पुरोहित पंडित दाता दीन, जो धर्म और पैसे के दम पर होरी जैसों का खून चूसते हैं।
एक और अहम पात्र है झूनिया, भोला की विधवा बेटी।
हाँ, जिसे गोबर प्रेम जाल में फंसाकर बाद में छोड़ देता है।
और शहर में हमें मिलते हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, प्रोफेसर मेहता, मिस माल्टी,
जिनकी दुनिया गांव के कठोर यथार्थ से कोसों दूर लगती है।
तो कहानी का पहिया तब घूमता है,
हाँ, जब होरी भोला से वो गाय सुंदरिया उधार ले आता है
और बदले में एक वादा करता है भोला से,
उसकी दूसरी शादी कराने का वादा। गाय के घर आने से होरी के परिवार में एक उम्मीद सी जगती है, खुशी की लहर।
लगता है जैसे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई, समाज में मान बढ़ गया।
मगर ये खुशी बहुत क्षणिक होती है, चांदनी रात की तरह।
होरी का छोटा भाई हीरा,
हाँ,
वो होरी की इस तरक्की से जलता है
और चुपके से गाय को जहर दे देता है।
होरी का सपना, उसकी उम्मीद,
सब कुछ,
सब गाय के साथ ही दम तोड़ देता है।
ये सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं थी, ये होरी के भविष्य पर एक भयानक चोट थी।
और यही होरी एक ऐसा फैसला लेता है जो उसके पतन की कहानी लिख देता है।
वो जानता है कि ये काम हीरा का है,
हाँ, लेकिन परिवार की इज्जत बचाने के लिए, भाई को पुलिस से बचाने के लिए वो झूठ बोलता है,
कहता है उसे किसी पर शक नहीं।
ये फैसला ऊपरी तौर पर देखें तो त्याग लगता है, पर शायद
ये उस गहरी बेबसी और संघर्ष से बचने की प्रवृत्ति का नतीजा है जो पीढ़ियों के शोषण ने उसके मन में भर दी है। वो टकराव मोल नहीं लेना चाहता,
लेकिन ये चुप्पी, ये उसे बहुत महंगी पड़ती है।
गांव की पंचायत बैठती है और पंचायत का मतलब वही गांव के ताकतवर लोग,
पंडित दाता दीन, झिंगुरी सिंह जैसे महाजन, वो होरी की मजबूरी को समझ जाते हैं।
वो जानते हैं कि होरी भाई को बचा रहा है और इसी का फायदा उठाकर
उस पर गाय की हत्या का प्रायश्चित करने और बिरादरी को भोज देने के नाम पर भारी जुर्माना लगा देते हैं।
और यहीं से होरी कर्ज के उस दलदल में धंसना शुरू होता है जिससे वो फिर कभी उबर नहीं पाता।
जुर्माना भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता है
और फिर उस कर्ज का सूद चुकाने के लिए और कर्ज।
ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो उसकी बची खुची जमीन, उसकी मेहनत और आखिर में उसकी जिंदगी भी निगल जाता है।
प्रेमचंद दिखाते हैं कि कर्ज सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं है, ये किसान की आत्मा को भी गिरवी रख लेता है।
कहानी में एक और अहम मोड़ तब आता है जब होरी का बेटा गोबर,
हाँ गोबर, वो भोला की जवान विधवा बेटी झूनिया से प्रेम कर बैठता है
और झूनिया गर्भवती हो जाती है।
अब गोबर जो बड़ी बड़ी बातें करता था, जिम्मेदारी सामने आते ही डर जाता है।
वो गांव और बदनामी के डर से चुपके से लखनऊ भाग जाता है,
झूनिया को बिल्कुल बेसहारा छोड़कर।
बिचारी झूनिया समाज के डर से कांपती हुई रात के अंधेरे में होरी के दरवाजे पहुंचती है।
होरी तो हिचकिचाता है, समाज के बहिष्कार का डर उसे सताता है।
लेकिन यहाँ धनिया, वो अपने असली रूप में सामने आती है।
वो जानती है कि झूनिया को पनाह देने का मतलब है पूरे गांव से दुश्मनी मोल लेना, पंचायत का नया कहर झेलना।
लेकिन वो एक अकेली बेसहारा औरत को, जो माँ बनने वाली है, उसे दरवाजे से लौटाने से साफ इनकार कर देती है।
वो कहती है, जब लाज बहु मेटी की है तो उसे चाहे घर में रखो चाहे निकाल दो, क्या हिम्मत है।
उसका ये साहस, ये नैतिक दृढ़ता वाकई उसे उपन्यास के सबसे मजबूत पात्रों में से एक बनाती है।
और जैसा डरता वही होता है।
हाँ, झूनिया को रखने की सजा मिलती है, पंचायत होरी पर फिर जुर्माना लगाती है, सामाजिक बहिष्कार होता है,
उसे अपना घर तक गिरवी रखना पड़ता है, समाज का पाखंड यहाँ बिल्कुल नंगे रूप में सामने आता है।
जो लोग खुद अनैतिक हैं वही नैतिकता के ठेकेदार बनकर होरी को सजा देते हैं, कितना अन्याय है।
उधर लखनऊ में गोबर शहरी जिंदगी का अनुभव करता है, मिल में मजदूरी, हड़तालें, शोषण,
पैसे की चमक दमक और उसके पीछे की कालिक भी देखता है।
वो कुछ पैसे कमाता है, थोड़ा आकड़ना सीखता है, लेकिन गांव लौटकर भी वो परिवार की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा पाता।
शहर उसे पूरी तरह बदल नहीं पाता, लेकिन उसकी जड़ें भी गांव से जैसे उखड़ सी जाती हैं।
लखनऊ में ही हमें शहरी उच्च वर्ग और बुद्धिजीवियों की झलक मिलती है।
प्रोफेसर मेहता जो आदर्शवाद की बातें करते हैं, मिस मालती,
हाँ मिस मालती जो शुरू में तितली की तरह चंचल हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें सेवा भाव जागता है।
उद्योगपति मिस्टर खन्ना है, पत्रकार मिर्जा खुर्शीद है,
ये लोग प्रेम, विवाह, स्त्री पुरुष समानता, समाजवाद जैसे मुद्दों पर लंबी चौड़ी बहसें करते हैं।
प्रेमचंद यहाँ बड़ी कुशलता से दिखाते हैं गाँव के किसानों की पेट की आग बुझाने की जद्दोजहद
और शहर के पढ़े लिखे लोगों की ये बौद्धिक बहस है, इनके बीच का गहरा विरोधाभास।
एक तरफ जीवन मृत्यु का संघर्ष है, दूसरी तरफ सिद्धांतों की बातें।
हालांकि मिस मालती का चरित्र दिखाता है कि करुणा और सेवा का भाव वर्ग की सीमाओं को लांघ सकता है, पर कुल मिलाकर
शहर और गांव दो अलग अलग दुनिया लगते हैं जिनके बीच कोई पुल नहीं है।
और गांव में होरी का पतन वो लगातार जारी रहता है।
कर्ज चुकाने के लिए उसकी थोड़ी बहुत जमीन बिक जाती है, वो अपने ही खेतों पर मजदूर बन जाता है,
फिर बंधुआ मजदूर, हाड़ तोड़ मेहनत, आधा पेट भोजन, चिंता, अपमान,
ये सब मिलकर उसके शरीर और आत्मा दोनों को निचोड़ देते हैं।
वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता जाता है।
ये देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी व्यवस्था ही उसे पीस डालने के लिए बनी है।
और यही प्रेमचंद की वो कड़वी सच्चाई याद आती है।
जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है।
होरी की ईमानदारी उसकी शराफत उसे बचाती नहीं बल्कि शोषकों का काम आसान कर देती है।
उसकी नियति जैसे
हाँ,
पहले से तय है।
बिल्कुल।
उपन्यास का चरमोत्कर्ष होरी के मृत्यु के साथ आता है।
वो सड़क बनाने के काम में मजदूरी करते हुए बीमार पड़ता है, मरणासन्न अवस्था में घर लाया जाता है
और अंतिम सांसें लेते हुए भी उसे महाजन के पैसे चुकाने की चिंता है।
सोचिए जरा।
और इस दुखद क्षण में भी शोषण उसका पीछा नहीं छोड़ता।
पंडित दाता दीन वहां पहुंच जाते हैं। होरी की मरती हुई पत्नी धनिया से, जो पहले ही दुख से टूटी हुई है,
उनसे बेशर्मी से कहते हैं कि होरी की आत्मा की शांति के लिए गोदान करना जरूरी है।
ये धर्म के नाम पर पाखंड और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।
तब धनिया, जिसके पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा,
वो अपनी जिंदगी भर की बचत, शायद कुछ आने पैसे थे, वो पंडित के हाथ पर रखती है
और जो कहती है वो शब्द हिंदी साहित्य के शायद सबसे मार्मिक और शक्तिशाली संवादों में से हैं।
महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है।
इन शब्दों में एक जीवन भर का संचित दुख है, क्रोध है और उस पूरी व्यवस्था के प्रति गहरा व्यंग्य है।
एक विस्फोट है जैसे।
और इन्हीं शब्दों के साथ होरी दम तोड़ देता है।
जीवन भर गाय की इच्छा रखने वाला होरी, मोक्ष के लिए गोदान का सपना देखने वाला होरी,
आखिर में चंद सिक्कों के गोदान के साथ दुनिया से विदा होता है।
उपन्यास का शीर्षक अपनी सबसे क्रूर और त्रासद विडंबना के साथ साकार होता है।
होरी की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मन में एक टीस छोड़ जाती है।
अगर हम इस कहानी के मूल विषयों पर एक नजर डालें तो सबसे पहले तो किसान का वो चौथरफा शोषण।
हाँ, जमींदार, महाजन, पुरोहित, सरकारी कर्मचारी, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी सब मिलकर उसे लूटते हैं।
दूसरा बड़ा मुद्दा है कर्ज का जाल। कैसे एक छोटा सा कर्ज किसान को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी में जकड़ लेता है।
जाति व्यवस्था का अन्याय भी साफ दिखता है, खासकर झुनिया के साथ जो हुआ।
और धर्म, धर्म यहाँ आस्था कम, शोषण का हथियार ज्यादा नजर आता है, पंडित दाता दीन जैसे पात्रों के जरिए।
फिर गांव और शहर का वो विभाजन, वो अलगाव प्रेमचंद ने बड़ी गहराई से दिखाया है।
दोनों दुनियाओं की समस्याएं, सोच, जीवन शैली कितनी अलग हैं।
लैंगिक भूमिकाएं भी एक अहम पहलू हैं। धनिया का चरित्र,
हाँ धनिया, वो पारंपरिक भारतीय नारी की छवि को चुनौती देती है। उसकी हिम्मत, उसकी नैतिकता होरी की निष्क्रियता के सामने खड़ी होती है।
और होरी बनाम गोबर का संघर्ष, वो परंपरा और आधुनिकता की टकराहट को दिखाता है।
प्रेमचंद की लेखन शैली की बात करें तो ये सामाजिक यथार्थवाद का शिखर है।
मतलब समाज की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आदर्शवाद के, जैसा है वैसा दिखाना।
वो एक सर्वज्ञ कथावाचक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कहानी सुनाने वाला पात्रों के मन की बातें भी जानता है, पूरी कहानी पर उसकी नजर है।
इससे हमें घटनाओं और पात्रों की मानसिकता की गहरी समझ मिलती है।
भाषा एकदम सरल, सीधी, लेकिन चोट करने वाली।
संवाद ऐसे मानो सचमुच गांव के लोग बोल रहे हों।
प्रतीकवाद का भी सुंदर प्रयोग है, जैसे गाय का प्रतीक।
हाँ, जो होरी के सपनों, उसकी सामाजिक स्थिति और धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है।
और विडंबना, वो तो जैसे उपन्यास के रेशे रेशे में बुनी हुई है, खासकर अंत में।
उपन्यास का असर बहुत गहरा होता है, पाठक होरी के साथ जुड़ जाता है,
उसकी बेबसी पर गुस्सा आता है, धनिया के साहस को सलाम करने का मन करता है
और पूरी व्यवस्था के प्रति एक सवाल खड़ा होता है मन में।
प्रेमचंद ने गरीबी को आंकड़ों से निकालकर मानवीय चेहरे दिए हैं।
ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक क्रूर व्यवस्था इंसान की कमर तोड़ सकती है, लेकिन
उसकी मानवीय गरिमा को पूरी तरह मिटा नहीं सकती।
धनिया का वो अंतिम संवाद उसी गरिमा का सबूत है।
तो क्या गोदान आज भी प्रासंगिक है, क्या लगता है?
मेरे ख्याल से बिल्कुल। शोषण के तरीके बदल गए होंगे शायद।
हाँ, जमींदार और महाजन का रूप बदल गया होगा,
लेकिन
सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ आम आदमी की गरिमा का संघर्ष, वो तो आज भी उतना ही सच है।
और ये उपन्यास साहित्य की ताकत का भी प्रमाण है।
कैसे शब्द हमें सच का आईना दिखा सकते हैं, हमारे अंदर करुणा जगा सकते हैं
और शायद सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि क्या हम अपने आसपास के होरी और धनिया के प्रति संवेदनशील हैं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है।
तो अंत में सवाल यही है कि क्या होरी की कहानी हमें सिर्फ अतीत की एक दुखद दास्तान लगती है, या इसमें हमें आज के समाज की भी कोई झलक दिखती है जिसे बदलने की जरूरत है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।